Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ke uske mata pita kaun hain, jo hai hi adrishya. अब उसके माता पिता की कल्पना क्या करोगे? और माता पिता का मतलब है उसका कारण क्या है, उसका हेतु क्या है, उसका स्वरूप क्या है। सांसारिक चीजों में कुछ भी हमें करना हो, कोई भी बात मन में आए, तो हेतु स्वरूप फल चिंतनम, तीन बातों का विचार करते हैं कि जो चीज मैं लेना चाहता हूं, जो बात मेरे मन में आई है कि ये मैं करूं, हेतु इसका कारण क्या है, क्यों करूं। जब तक ये मैं नहीं कर रहा था या जब तक ये वस्तु मेरे पास नहीं थी, तब भी मुझे क्या कमी थी। भौतिक दृष्टि से फर्ज करो कोई बात हमारे मन में आई कि मैं ये ले लूं, तो जो साधक है वो एकदम उसे लेने नहीं चल पड़ेगा। साधक का काम होता है कि जब वो मन में आया कि ये ले लूं, तो उसका हेतु सोचे, हेतु क्यों ले लूं, क्यों ये मेरे मन में आया। ये वस्तु जो आज तक मेरे पास नहीं थी, उसके बिना मैं रह रहा था, क्या परेशानी थी, कौन सी अपूर्णता की पूर्णता हो जाएगी इसको लेने पर, कौन से अभाव का भाव, कौन सी ऐसी कमी है मेरे में जिसको मैं ये वस्तु लेकर पूरा कर लूंगा, और क्या इस वस्तु को ले लेने के बाद फिर मेरा सब कुछ पूर्ण हो जाएंगी चीजें, फिर और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आज से पहले मैंने कभी इस तरह की चीजें नहीं ली। जितना जितना इस पर विचार करेंगे, आप सोचते चले जाएंगे कि ये मैंने इससे पहले भी बहुत कुछ लिया लेकिन पूर्ति नहीं, फिर और फिर और फिर और आज ये बात आ गई है, ये भी ले लूंगा तो हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर ऐसा विचार आना शुरू हो जाए तो आप समझ लो कि हम साधना की ओर आगे बढ़े, सत्य की ओर आगे बढ़े। इसको हेतु चिंतन कहते हैं। हेतु कोई भी भाव मन में उठे, कोई भी वस्तु लेने की बात मन में आए, कोई चीज लेने की बात मन में आए, तो जब तक उसका हेतु नहीं तब तक वो। अब जो अदृश्य है उसका हेतु ढूंढो क्या है। अदृश्य मोटे तौर पर जो दिखलाई नहीं देता। अब क्यों दिखलाई नहीं देता? क्योंकि दिखलाई वो देगा जिसमें स्थूलता हो, स्थूल हो, ठोस हो। जो सूक्ष्म होगा वो दिखलाई कहां से देगा? शरीर तो दिखलाई दे जाएगा, लेकिन आत्मा को देखना हो तो कहां से दिखलाई दे, क्योंकि वो सूक्ष्म। दृश्य शब्द जहां भी आएगा वहां स्थूलता निश्चित रूप से होगी, और जहां स्थूलता होगी वो पंचभूतों से बना हुआ होगा, अगर शास्त्र को आप मानते हैं तो। जहां कुछ भी दिखलाई देगा वो पंचीकृत पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं का ही जोड़ तोड़ होगा। इनके बिना कोई भी वस्तु स्थूलता को प्राप्त नहीं होती, ऐसा हमारे शास्त्रों का निर्णय है और वो बिना किसी तर्क के मान्य। इसका अर्थ ये हो गया कि वो पंच भौतिक नहीं है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। अदृश्य में ही ये बात छुपी हुई। अदृश्य को अपने आप इस शब्द को लेकर भी, क्योंकि बात पहले ही आपको बतलाई कि शब्दों के बदले में अब शब्द नहीं चाहिए। आपने कहा अदृश्य क्या है, तो मैंने उसको अगोचर कह दिया, अग्राह्य कह दिया, इनविजिबल अंग्रेजी बतला दी अपनी तरफ से। तो ये मैंने ये तो बतला दिया कि मुझे अंग्रेजी भी आती है, लेकिन अदृश्य को नहीं बतला पाया। और सत्य की प्रतिज्ञा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक अदृश्य को ना समझा पाए। मैं अदृश्य के बदले में अरबी का शब्द, फारसी का शब्द, अंग्रेजी का शब्द, तेलुगु का, मलयालम, बंगला, ये सब भाषा, इनके इक्विवेलेंट पर्यायवाची शब्द तो बतला सकता, लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा कि अदृश्य से हम दूर हटते चले जाएंगे। जिस बात को पकड़ना था उससे हम दूर हटते चले जाएंगे, सत्य से दूर होते चले जाएंगे और झूठ के उस चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इसलिए पुस्तकों का, जितनी मोटी पुस्तक देखोगे आप, उतना ही आप असत्य में और आगे फंसते चले जाओगे, सत्य की ओर नहीं जाओगे। तो जो अदृश्य ही है, ये को लिख कर भी उसको बतलाया जा सकता है, जो दृश्य हो, जो देखा जा सके, जिसका कोई हेतु हो, जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई परिणाम हो। अगर ये चीजें नहीं हैं तो उसको लिख के भी कोई नहीं बतला सकता। इसीलिए समस्या आती है जब उस सत की बात करते हैं कि वहां लिखना, पढ़ना, करना, ये सब खत्म हो जाता, इनमें से किसी की भी वहां तक पहुंच नहीं। असल में अनुभूति के जितने भी विषय, बहुत विषय नहीं है, अनुभूति का विषय एक ही है और अनुभव में भी जो आता है वो एक ही है। जब तक हमारी इंद्रियां अलग अलग हैं, अंतःकरण के भेद हैं, तब तक हमें उसका भी अलग अलग अनुभव नजर आएंगे। वस्तुतः जब अंतम तथ्य तक पहुंचते हैं तो गर्मी और सर्दी एक ही तत्व के दो नाम हैं, ये दो नहीं। गर्मी और सर्दी भी तब तक ही है जब तक स्पर्श तन मात्रा से हम परिचित, और जब तक हमारा तादात्म्य उससे है। जब वो तादात्म्य उससे नहीं रहा, एकत्व में, उस समग्रता में पहुंचे, तो ये खत्म हो जाते, ये वो नहीं रहते। मरना, जीना, ये बातें फिर वहां नहीं रहती। शमस को उसने एक अनुभूति हुई अहम ब्रह्मोस्मि की, वो पहुंच गया उस तत्व तक। जिसको हम अहम ब्रह्मोस्मि कहते हैं उसको अरबी में अनल हक कहते हैं। हक कहते हैं असलियत को, हक कहते हैं सत्य को। अनल हक का मतलब होता है कि मेरे अतिरिक्त हक कोई नहीं, मैं ही हूं, सच्चाई मैं ही हूं, ब्रह्म मैं ही, ऐसा। और ऐसा कहना इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में कुफर है। कुफर का मतलब होता है झूठ, मायावादी। ऐसे व्यक्ति की सजा मौत है, ऐसा उन्होंने बना रखा। तो उसको भी मौत के दंड दिया गया कि ये जो रोज कहता है, मौलवियों ने बड़ा समझाया कि तू इस बात को छोड़ दे अनल हक को, और तू ये कह दे कि वो खुदा ही सब कुछ है, मैं कुछ। उसने कहा कोई और होता ही नहीं खुदा, तो मैं क्या कर सकता, मैं ही वो हूं। और इतना ही नहीं, वो कहता है ارزو سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ ارزو سما کہتے ہیں ریکھانش اور اکشانش کو، پرتھوی کو جب ماپتے ہیں تو ریکھانش، آپ نے کبھی گلوب دیکھا ہوگا تو گلوب میں جو لائنیں ہوتی ہیں، میں اتنے ڈگری پرتھوی ہے 360، ارتھات پوری پرتھوی کو ماپنے کا جو ڈھنگ ہے وہ ریکھانش اور اکشانش ان کے ڈھنگ سے ماپتے ہیں، نارتھ سے ساؤتھ تک کیسے اور ایسٹ سے ویسٹ تک کیسے ہے۔ تو اسی کو اردو میں ارض و سما، ارض کہتے ہیں ریکھانش کو، سما کہتے ہیں اکشانش کو۔ وہ خدا کے لیے کہتا ہے، ایشور کے لیے کہتا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ وسعت کہتے ہیں وشالتا کو، کہ دنیا بھر کی آپ لکیریں کھینچو اس کو ماپنے کے لیے کہ کتنی لمبائی ہے اس کی اور کتنی چوڑائی ہے اس کی۔ لمبائی اور چوڑائی کو ماپنے کے لیے جو رسی ہے اس کو ارض اور سما کہتے ہیں، جو لمبائی کو ناپ لے وہ ارض، جو چوڑائی کو ناپ لے وہ سما، وہ ریکھانش اور وہ اکشانش۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی وہ دل ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ دنیا بھر کی لائنیں کھینچ لو لمبی سے لمبی، اس کو ماپنے کے لیے تو قابو میں نہیں آئے گا، لیکن میرا ہی وہ دل ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ میں تیرے سے بھی بڑا ہوں، میرے دل میں تو رہ رہا ہے، چلو لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تیری لمبائی چوڑائی نہیں پتا لگ رہی، اور میرے دل کے کونے میں تو بیٹھا ہوا ہے، میرا مقابلہ کیا کر لے گا۔ انالحق اہم برہموسمی کی انوبھوتی جب ہوتی۔ تو جب اس کو موت کی سزا ہوئی، سزا بھی اس کو ایسی نہیں ہوئی، وہ بھی اتہاس میں انوٹھی بات، یہ کہا گیا پہلے اس کی انگلیاں کاٹو، پھر اس کا ہاتھ کاٹو، پھر یہاں تک بازو کاٹو، پھر اس کا سر کاٹو، پہلے ایک ایک انگ کاٹو اس کا۔ تو جس سمے اس کی انگلیاں کاٹی گئیں ہاتھوں کی اور اس سے خون نکل رہا تھا، تو اسلام میں نماز سے پہلے وضو کرتے، وضو کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ میں پانی لے کر اس کو کوہنی تک جوں بہاتے ہیں نیچے، ہاتھ صاف ہو گئے پھر نماز پڑھے۔ تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا انالحق، جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو خون سے اس کے کوہنیوں تک خون بہنے لگا، اور جو اس کے ورودھی تھے، جو اس کو سزا دے رہے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ شمس دیکھ کتنا سندر وضو ہو رہا، ارتھات نماز پڑھنے کے لیے جیسے پانی کو ہاتھوں سے لیتے ہیں، کہ اب تجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو دکھی کرنے کے لیے۔ لیکن وہ اس وچلت نہیں ہوا، وہ بہت پرسن ہوا، وہ اور خوش ہوا، وہ بہت ہسا، اور اس نے اپنے ورودھیوں کو یہ کہا کہ یہ ابھی تو صرف وضو ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں دھو رہے، تھوڑی دیر میں آپ دیکھنا یہ جو سر ہے یہ میرے قدموں پہ پڑا ہوا ہوگا اور سلام کرے گا مجھے، کیونکہ میں انالحق وہ ہوں کہ میرے سامنے بڑے بڑے جھکتے ہیں، یہ سر ہی کیا ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے پاؤں میں پرنام کرنے کے لیے آئے گا۔ تو یہ وہ ایک انوبھوتی ہے۔ اب یہ انوبھوتی جس کے اندر ہو رہی ہے اس کو باہر کیا ہو رہا ہے، اس کی وسعت اتنی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکتا، وہ مر نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر جو ہے بس یہ باقی سب اس میں کلپت ہے۔ جس انوبھوتی کا اسے کچھ احساس ہو رہا ہے وہ ادرشیہ ہے، ادرشیہ شبد سے یہاں اس کو کہا گیا۔ تھوڑا سا آپ اس بات کو اس ڈھنگ سے بھی سمجھیں کہ جب کبھی کوئی انوبھوتی ہوتی ہے، سانسارک जीवन में भी अगर कोई अनुभूति होती है अच्छी सी, तो अनुभूति के समय मन और बुद्धि ये दोनों उपस्थित नहीं होते, शब्द भी नहीं होते, और शब्दों का संयोजन करने वाली प्रतिभा के कैसे उसको करें वो गायब होती। जब अनुभूति होके हट जाती है फिर शब्द लौट आते, मन भी लौट आता। उस समय जब शब्द और मन लौट के आते हैं तो अनुभूति तो जा चुकी होती है। उस अनुभूति के कंपन मात्र, वाइब्रेशंस, वो रह गए होते, कुछ रोमांच सा रह गया होता। अब वो अनुभूति नहीं है वहां, उसके कंपन मात्र, वो सॉलिड वस्तु नहीं है, उसकी वाइब्रेशंस हैं, कुछ कंपन से बाकी रह गए हुए हैं। अब अगर हमारे वो लौटे हुए शब्द बड़ी कोशिश भी करेंगे और बड़ी अच्छी किसी की प्रतिभा हो और भगवान की कृपा हो, सात्विकता हो मन में, कि उसको कुछ ऐसे शब्द मिले हुए हों, अभिव्यक्ति की शक्ति मिली हुई हो, तो वो भी उन अनुकंपनों की ही कुछ सूचना देगा, अनुभव की नहीं। इस बात को अगर आप स्वयं सोच सको, पकड़ सको, ध्यान दे सको, तो आप अदृश्य शब्द को थोड़ा बहुत कुछ समझें। यत तत् अदृश्यम, वो जो तूने पूछा है वो अदृश्य है। अदृश्य की कोई जाति नहीं होती कि किस जाति का अदृश्य है। हमारे लिए तो जब तक किसी की कोई जाति ना हो, कोई संबंध ना हो, कोई क्रिया ना हो, तब तक उसका वर्णन हो नहीं सकता। शब्द तो उसे ही पकड़े, इसलिए उसको आगोत्रम भी कह दो, अग्राह्यम भी कह दो, अदृश्य भी कह दो, अवर्णम भी कह दो, अचिंत्यम भी कह लो, एक ही बात। इन सब शब्दों को एक ही शब्द में अगर हम बांधें और फिर अनुचिंतन कहां तक कि करते करते वो चिंतन ही अदृश्य, जब वो चिंतन ही अदृश्य होगा तो फिर अदृश्य से अदृश्य की मुलाकात होगी। फिर अब अदृश्य दो होते नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। ऐसा नहीं, दृश्य तो बहुत हो सकते हैं, दृश्य तो इसी एक हाल में 500 दृश्य हो सकते हैं, लेकिन नवखंड 14 भुवन में अदृश्य दो नहीं होंगे, दो भी नहीं होंगे, दृश्य तो जितने मर्जी बना लो। अच्छा, कभी चलो उस अदृश्य तक नाम भी पहुंचे, आप अपने आप वैसे ही कभी कल्पना करना कि एक अदृश्य इधर है, एक अदृश्य इधर है, दोनों अदृश्य मिले तो क्या हुआ। इन कल्पनाओं में भी सात्विकता है, सात्विकता का मतलब इसमें किसी विषय का चिंतन नहीं हो रहा, इसमें रूप का, रस का, गंध का, उनका कुछ अर्थ नहीं। इसमें उसका चिंतन हो रहा है जिसमें सभी विषय कल्पित हैं, फिर वही शब्द आएगा कल्पित। अदृश्य में सब दृश्य कल्पित हैं, जो कुछ भी, इसका अर्थ क्या हुआ? अदृश्य में सब दृश्य कल्पित। इसका अर्थ यह है कि अदृश्य ही स्थाई है, जितने दृश्य हैं ये अदृश्य से पैदा होते हैं, उसी में स्थित हैं, उसी में इनका विलय। ऐसा आप चिंतन करोगे तब भी अदृश्य और वो जिसको ढूंढ रहे हो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। जितने भी दृश्य हैं अदृश्य में ही कल्पित। अच्छा, जो अदृश्य है वो खत्म कब होगा, उसकी मौत कब होगी? असल में मौत का ही एक नाम अदृश्य। मौत नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। किसी दृश्य को देखकर आप मौत कह देते हो, अदृश्य की कल्पना हो तो मौत नहीं हो। जिसको आप मौत कहते हैं वो दृश्य, वो अदृश्य में कल्पित। अच्छा, अगर ऐसा सोचो थोड़ी देर के लिए कि संसार में जैसा रोज सोचते हो कि हर एक की मौत आवश्यक, बड़ी बार सुनाई, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मरेगी नहीं, उपनिषदों का ऋषि कहता है हर चीज की मौत है लेकिन मौत की मौत नहीं। अब इसमें फिर एक कोई एक सूफी संत हुए, वो कहते हैं रब एक गुंजलदार बुझारत। बुझारत कहते हैं उस कहानी को, जो कहानियां सी डालते हैं ना कि जो इसका अंतर क्या होगा, तो वो एक गुंजलदार बुझारत। गुंजलदार का मतलब जिसमें कई सारी गुंजलें, जिसमें उलझने हैं कई सारे, और उसकी उलझनों को सुलझाते सुलझाते आदमी ही पागल हो जाता, वैसा हो जाता। अब असली बात तो यह है, पागल हो जाने का मतलब होता है कि वो ठीक जगह पहुंच जाता है। उसे लोग तो पागल कहेंगे ही, जो भी इस रास्ते पर पहुंचे, जिस अनल हक की अभी हम बात कर रहे थे उसको किसी ने अकलमंद थोड़े कहा था अपने समय पर, सबने कहा पागल है, थोड़ी सी बात के लिए जान गंवा रहा है, इतनी बात ही तो है ना कि मैं ही सब कुछ छोड़ दे, इसको कहना तो बचा रहे। लेकिन वो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, जो असली बात है उसको मैं कैसे छोड़। तो वो तो दुनिया की नजर में पागल ही रहेगा। तो इसलिए जब हम कहते हैं या जब वेदांत ऋषि कहता है हमारा उपनिषदों का कि संसार में हर एक की मौत है लेकिन मौत की मौत नहीं, ये मौत पैदा होना रहना ये सब काल में कल्पित है। काल में कल्पित हैं तो काल क्या है? फिर अदृश्य शब्द पर आ जाओ। काल और अदृश्य में कोई अंतर नहीं, शब्द दो हैं। जिस तत्व की ओर ऋषि इशारा करना चाहते हैं, यत तत् अदृश्यम, जिस को तू ढूंढ रहा है वो अदृश्य है, और जिसको दृश्य कहते हैं वही नित्य है, उसका नाश नहीं कभी, और जो नित्य है वही काल का स्वरूप है। काल का काल नहीं होगा, मौत की मौत नहीं होगी। اور سب چیزوں کی موت ہو سکتی ہے۔ سرشٹی کی اتپتی، سرشٹی کی استھتی، سرشٹی کا لے، یہ سب کال میں کلپت ہیں۔ کال کو کچھ نہیں ہوتا، نہ اس کی کبھی اتپتی ہوئی ہے آج تک، نہ اس کی کبھی استھتی ہوئی ہے آج تک، نہ اس کا ولے ہونا ہے کہیں۔ گھڑی ہے ہمارے سامنے، گھڑی کی سوئیاں چل رہی، ہم عام طور پر گھڑی والے سمے کو ہی سمے مانتے، جب کال کی بات کرتے ہیں، نتیتا کی بات کرتے ہیں تو سمے، دیکھو ایک سمے ہوتا ہے اس کو ایتہاسک سمے کہتے ہیں، ایک بھوتک سمے، ایک مانسک سمے۔ کال کو سمجھنے کے لیے ان تینوں کو ٹھیک سے سمجھیں تو تب ہم کال کے، جس کو ٹائم کہتے ہیں، ٹائم کے کانسیپٹ کو ٹھیک سے سمجھ پاتے ہیں۔ بات سوکشم ہے اور سمے بھی چاہیے اس کے لیے، لیکن موٹے طور پر آپ اتنا ہی چنتن کرو کہ گھڑی ہے آپ کے پاس اور گھڑی کی سوئیاں چل رہی ہیں، گھڑی خراب ہو جائے، اس کی بیٹری ختم ہو جائے تو کیا کال تھم جائے گا؟ کال رک گیا کیا؟ گھڑی کے رکنے یا چلنے سے کال کا کوئی سمبندھ ہی نہیں۔ جیسے ہمارے پاس گھڑی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پرکرتی کی گھڑیاں، سوئیاں چل رہی ہیں، چلتی رہ۔ یہ چاند، سورج، تارے نہیں رہیں گے تب بھی کال رہے گا، ان کے ختم ہونے سے کال کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا اپنے چنتن میں آپ لے آئیں تو پھر ہم تھوڑا بہت اس کے نزدیک پہنچے جس کو رشی یہاں کہہ رہے ہیں، یک تک ادرشیم، تو جس کے سمبندھ میں میرے سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا ہے جسے ایک کو جان لینے کے بعد پھر کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، وہ کیا ہے جس ایک کو جان لینے کے بعد سب کچھ جانا ہوا ہو جاتا ہے، وہ جو تو پوچھ رہا ہے وہ ادرشیہ ہے۔ یہ ایک شبد ہے ادرشیہ جو اس نے لی۔ اب آپ کال کی اودھارنا کو بھی لیں گے ادرشیہ تک پہنچے، کیونکہ وہی نتیہ ہے، وہی وبھو ہے، دیش کال وستو پریچھن وہ نہیں ہے۔ جو چیز دکھلائی دے گی وہ دیش سے بھی پریچھن ہوگی، کال سے بھی پریچھن ہوگی، وستو سے بھی پریچھن۔ اوم تتسات۔
اوم پورنمدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچیتے پورنسیا پورنمادایا پورنمیوابشیشیتے۔ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।